द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूह की अवधारणा का उल्लेख किया है, न कि द्वितीयक समूह की। इतना अवश्य है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा के कारण ही द्वितीयक समूह की अवधारणा का विकास हो सका है। जॉर्ज सी होमंस तथा किंग्सले डेविस आदि विद्वानों ने द्वितीयक समूह पर प्रकाश डाला है। डेविस ने द्वितीयक समूह के संबंध में लिखा है कि द्वितीयक समूहों को स्थल रूप से सभी प्राथमिक समूहों के विपरीत कहकर परिभाषित किया जा सकता है। वेरस्टीड ने बताया है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं हैं। इन दोनों परिभाषाओं से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूह में पाई जाने वाली विशेषताओं के विपरीत प्रकार की विशेषताओं को व्यक्त करने वाले समूह ही द्वितीयक समूह हैं। आगवर्न एवं निमकाफ ने लिखा है कि द्वितीयक समूह उन्हें कहते हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है। आकस्मिक संपर्क ही द्वितीयक समूह का सार तत्व है। लुडवर्ग उन समूहों को द्वितीयक समूह मानते हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक हित एवं व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के बीच अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में सदस्यों को जानना यहाँ आवश्यक नहीं है। ऐसे समूहों में शारीरिक निकटता भी अनिवार्य नहीं है। ये संबंध औपचारिक प्रकार के जीवन के किसी एक पक्ष से संबंधित अस्थायी प्रकार के विशेष हितों पर आधारित और हस्तांतरणीय होते हैं। ये समूह विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। उद्देश्यों के पूर्ण होने पर ये समाप्त हो जाते हैं। द्वितीयक समूह के सदस्यों के संबंध में अस्थायित्व तथा निरंतरता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूहों के सदस्य अपने आप को दृढ़ भावात्मक संबंधों में बंधा हुआ नहीं पाते हैं। इनमें स्नेह, सहानुभूति तथा दूसरों के हित को अपना हित समझने की प्रवृत्तियां नहीं पाई जाती। स्कूल, कॉलेज, राजनीति, दल, मजदूर संघ एवं राष्ट्र आदि द्वितीयक समूहों के ही उदाहरण हैं। इनमें विशेष नियमों के आधार पर सदस्यता प्राप्त की जाती है। द्वितीयक समूहों का आकार और क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है। इन समूहों की सदस्य संख्या हजारों लाखों तक हो सकती है। उपरोक्त विवेचन से द्वितीयक समूह की कुछ विशेषताएं स्वतः ही स्पष्ट हो जाती हैं। ये विशेषताएं निम्नलिखित हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं। नंबर वन, वे समूह जानबूझकर कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किए जाते हैं। नंबर दो, इन समूहों में सदस्यों का एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानना आवश्यक नहीं है। यहाँ संचार के साधनों द्वारा सदस्यों के बीच संबंध स्थापित होते हैं। नंबर तीन, इन समूहों में शारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। नंबर फोर, इनका आकार प्राथमिक समूहों की तुलना में काफ़ी विस्तृत होता है। नंबर फाइव, ये समूह व्यक्ति के जीवन के किसी पहलू विशेष से संबंधित होते हैं, अतः ये व्यक्तित्व के किसी एक पक्ष को ही साधारणतः प्रभावित कर पाते हैं। नंबर छः, इन समूहों में सदस्यों के उत्तरदायित्व सीमित हो पाते हैं। नंबर सेवन, इनमें संबंध संविदा या समझौते की प्रकृति के होते हैं जो निश्चित नियमों एवं शर्तों के आधार पर बनते हैं। नंबर एट, संबंधों में औपचारिकता पाई जाती है। यहाँ व्यक्ति के बजाय परिस्थिति का महत्व ज़्यादा होता है। नंबर नाइन, यहाँ संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। यहाँ व्यक्ति के बीच छुओ और जाओ, टच एंड गो के संबंध होते हैं। नंबर टेन, ये समूह सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को लेकर बनते हैं, अतः इनका स्वतः विकास नहीं होता। जैसे ही आवश्यकताएं बदलती हैं, उनके साथ ही इन समूहों की प्रकृति में भी परिवर्तन आ जाता है। द्वितीयक समूहों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रुप्स। नंबर वन, सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में सहायक। ये समूह सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक प्रगति में भी योग देते हैं। इन समूहों के प्रभाव से व्यक्ति तार्किक दृष्टिकोण को अपनाता है, भाई भतीजावाद से कुछ सीमा तक मुक्त होता है और प्रथाओं, रूढ़ियों या अंधविश्वासों से छुटकारा प्राप्त करता है। इन समूहों में नवीन प्रकार के व्यवहारों से व्यक्ति परिचित होता है और उन्हें ग्रहण करने का प्रयत्न करता है। यह समूह व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा की ओर प्रेरित करते हैं, उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करते हैं, उसे भविष्य के प्रति आशावान बनाते हैं तथा अपने प्रयत्नों के आधार पर नवीन परिस्थितियां अर्जित करने के लिए नए नए अवसर प्रदान करते हैं। नंबर दो, व्यक्ति में जागरूकता पैदा करते हैं। यह समूह व्यक्ति और समाज में जागरूकता उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण योग देते हैं। यह व्यक्ति में विवेक को जागृत करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण अपनाने में उसकी सहायता करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की भावना का विकास होता है। इन्हीं समूहों के माध्यम से स्त्रियों की प्रगति करने का अवसर मिला। नंबर तीन, श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण तथा श्रम को प्रोत्साहन। यह समूह व्यक्ति को श्रम के महत्व से परिचित कराते हैं, उसे कर्मठ बनाते हैं, श्रम का पुरस्कार देकर और अधिक प्रयत्न करने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। यह समूह व्यक्ति में जोखिम उठाने की क्षमता का विकास भी करते हैं, उनकी गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। इन समूहों के माध्यम से व्यक्ति में उदारता एवं सहिष्णुता भी आ जाती है, क्योंकि वह इनमें विविध प्रकार के लोगों के साथ मिलकर काम करता है। द्वितीयक समूहों की सदस्यता से व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों के साथ सुगमता से समायोजन कर पाता है। द्वितीयक समूह श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण को महत्व देते हैं, जिससे व्यक्ति के ज्ञान एवं कुशलता में वृद्धि होती है। नंबर फोर, सामाजिक नियंत्रण में सहायक। आज के जटिल औद्योगिक समाजों में इन समूहों के माध्यम से ही सामाजिक नियंत्रण बनाए रखे जा सकता है। प्रथाएं, परंपराएं, रूढ़ियां और धर्म ऐसे विविधतापूर्ण समाजों में प्रभावशाली ढंग से सामाजिक नियंत्रण नहीं बनाए रख सकते। यहाँ तो पुलिस, अदालत, कानून तथा प्रशासनिक संगठनों के माध्यम से ही व्यवस्था बनाए रखी जा सकती है।